अगला रुकू है 32 से 39। टॉपिक लिख लीजिए, अल्लाह की जीनत को हराम ना करो। और आप देखिएगा सवालिया अंदाज से आयत शुरू होती है। قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق। आप कह दीजिए किसने अल्लाह की पैदा की हुई जीनत को हराम किया। नोट कीजिए, अल्लाह ने जीनत औरत का हक बनाई। सूरह ज़ुहरुफ़ देखिए, औरत को अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें उसके मिजाज के अंदर डाल दी। अल्लाह कहते हैं इसको तकवा के नाम पे कौन हराम करता है? अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कह सकते। इसलिए आज दीन का न्यूट्रल वर्जन दीजिए। औरतों में भी निकाब पहन कर बैठ गए, बताइए मुझे बाहर जाकर क्या पहनेंगे? अगर आप औरतों में भी आकर बैठे और आपको हर वक्त इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं हाय अच्छे कपड़े पहन लिए गुनाहगार हो गई, हाय कढ़ाई वाले कपड़े बहुत गुनाहगारी की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। याद रखिए ये दिखावे का तकवा है। आज हमारे दो तरह के कपड़े होते हैं, ये पार्टी ड्रेसेस हैं, वेडिंग ड्रेसेस हैं, फंक्शनल, और ये कैजुअल्स। और कैजुअल में सबसे हल्के दो जोड़े कॉटन के या सफ़ेद रंग के, चाहे चिकन की सुराखों वाली शलवारी क्यों ना, ये मस्जिद में जाके पहनेंगे। ये किसी जगह को मर जाएगा, कहीं कुरान खानी में जाएंगे तो पहनेंगे, और शादियों का एक एक जोड़ा 40-50-50 हज़ार रुपये का, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। एक असूल बना ले आपका हर कपड़ा जिसमें आप नमाज पढ़ सकें, वो है बेस्ट कपड़ा। और अगर जिस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते और पढ़ें तो कभी बाजू खींचे तो कभी पीछे से कमीज़ खींचे और कहीं से टखने खुल जाएं, तो समझ लीजिए कि वो कपड़ा ठीक नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमाइए कि अल्लाह के पैदा किए हुए असबाब ज़ीनत को, जिनको अल्लाह ने अपने बंदों के वास्ते बनाया है, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किस शख्स ने हराम किया? आप कह दीजिए ये चीज़ें इस तौर पर कि क़यामत के रोज़ खालिस होंगे अहले ईमान के लिए और दुनिया की ज़िंदगी में मोमिनों के भी हैं। आप फरमा दीजिए अलबत्ता मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है। अब लिस्ट सुन लीजिए हराम की, तमाम फुहश बातें जो एलानिया हों या पोशीदा हों, और हर गुनाह की बात को, नाहक किसी पर जुल्म करने को, इस बात को कि अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें न लगा दो जिनको तुम नहीं जानते। हर गिरोह के लिए एक वक्त मुकर्रर है, बस जब वो वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। ऐ औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हों, जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करें, तो जो शख्स तकवा अख्तियार करे और रास्ती करे, बस इन लोगों पर कोई अंदेशा न होगा न वो गमगीन होंगे। और जो लोग हमारे इन अहकाम को चुटलाएँ और इनसे तकबर करें, वो लोग दोजख वाले होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। बस इस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बतलाए। इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब में है वो इनको मिल जाएगा, यानी इनके नसीब की चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज़ करने आएंगे, तो कहेंगे वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे? वो कहेंगे कि वो सब गायब हो गए, और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, इनके साथ तुम भी दोजख में जाओ। जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें वो जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, बस इनको दोजख का अज़ाब दुगना दो। अल्लाह ताला फरमाएगा, सबका ही दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं। यानी जिसने आपको देख कर बुरा काम किया तो उसको भी और आपको दोनों को दुगना अजर मिलेगा, यानी दुगनी सज़ा मिलेगी। जिसकी बुराई को देखकर दूसरे ने बुराई की तो दोनों को भी एक जितनी सज़ा मिलेगी। और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे, फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, बस तुम अपनी कमाई के बदले में अजाब का मज़ा चखो। क्या पता चला इस पूरे हिस्से में हमारे सीखने की बातें? पहली बात यह कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना है ताकि बेखौफ और बेगम हो सकें। याद रखिए आज इंसानियत खौफजदा है, इतना कुछ है लोगों के पास लेकिन दुखी इंसानियत। स्काई स्क्रैपर्स बना लिए, सितारों पे कमंदे डाल ली, हेल्थ इंश्योरेंसेस ले ली, नाइक के जूते पहन लिए लेकिन खुश नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि माँ नाराज़ हो ना तो अक्लमंद बच्चा खुश नहीं हो सकता। शौहर मुँह फेर के सो जाए तो औरत को कपड़े जेवर अच्छे नहीं लगते। आज आप और मैं अपने आप को टेंशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से निकालना चाहते हैं तो अल्लाह की बात माननी पड़ेगी। फिर दूसरी बात है, पाक चीज़ों को अपने से रोकिए नहीं। आपका अपना मिजाज है, ना पहनिए, कोई बुरी बात नहीं। आपका दिल नहीं लगता, ना सही, लेकिन दूसरों को ना रोकें, ख़ास तौर पे जब आप दीन के महफिलों में। और याद रखिए कि दीनदार को दूसरों को सही दीन दिखाना चाहिए। बहुत सारे नए आने वाले लोग सिर्फ इस वजह से दीन पे नहीं आते कि ये तो कमरे में, घर में भी, बाय में होते हैं, ये तो निकाब में होंगे, हाय बाहर जाके क्या होगा। नया नया जो शख्स दीन पे आता है ना, वो डर रहा होता है, उसको तो वैसे ही बेचारे को गिल्ट होता है पहली दफ़ा कुरान सुन के, हाय इतना कुछ है मेरे में गलत। फिर आप ज़रा इंटेंसिटी बढ़ा के दीन देंगे ना, तो होगा जैसे लोग हैं वैसे लोगों में रहें। पढ़े लिखों में पढ़े लिखे बन जाइए, पैसे वालों में चले जाएं, अमीरों में बैठे हैं जेवर पहन के चले जाएं, गरीबों में गए हैं आप चंद चीथड़े पहन कर चले जाइए। इसको कुछ इशू ना बनाइए, कपड़े हैं नहीं इसलिए जाना नहीं, हैं तो पहनने नहीं, ये गलत है। डोंट मेक इट अ इशू। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है, हम दीनदारों को एक ख़ास रंग रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। ज़रा सा उससे हल्का हट के देखें ना तो हमें शक होता है, ये तो नेक ही नहीं। हंसते हैं, हाय नेक नहीं, हाय ये बाहर खाना खा रहे थे नेक नहीं, लैंड क्रूज़र में बैठ के रहते हैं नेक नहीं। अल्लाह कहते मन हर रमजीन तल्लाही, अल्लाह ने मुसलमानों को कैसे सकने के लिए पैदा किया है। तो आज के दौर में ये भी एक बहुत बड़ा शैतान का ट्रिक है, दीन को कमरे में बंद कर दो, मस्जिद में बंद कर दो, ड्राइंग रूम में नहीं आ सकता। पार्टियों में क्यों नहीं बुलाते लोग दीनदारों को कि वो आएंगे तो रंग में भंग पड़ेगा, फिर हम मस्तियाँ नहीं कर सकते। और इसी तरह की बातें अभी चूंकि आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, 8-10 पारे और पढ़िए, इंशाल्लाह आपका जहन ख़ुद आपको बताएगा कि क्या हलाल है और क्या हराम है। फिर हमने सीखा कि अल्लाह के शरीक नहीं बनाने, बेहयाई और हक़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती करने से बचना है, खुले छुपे और फवाहिश से बचना है, शिर्क और अल्लाह पर बोहतान लगाने से बचना है। ज़ालिम लोगों की जान कब्ज़ करते वक्त फ़रिश्ते इनको बताएंगे कि वो ज़ालिम हैं, लिहाजा हर किस्म के जुल्म से अपने आप को बचा के रखना है। इसके बाद आयत नंबर 40 से 47 बहुत ही खूबसूरत रुकू है, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरत अल आराफ है। कुछ ऐसे लोगों का जिक्र कि जिनके रिज़ल्ट पोस्टपोन्ड हैं, जिनको अब थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा। आइए देखिए आयत 40 से, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और इनसे तकबर किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें इस बुरे अंजाम से बचा के रखे। और वो लोग कभी जन्नत में भी ना जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए। और हम मुजरिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। आज दुनिया में बड़ा आसान है अल्लाह के हुक्मों को झुठलाना, कल वहाँ सज़ा ये मिलेगी कि आसमान जिस पे जन्नतें हैं वहाँ रूह को ले जाने के दरवाज़े नहीं खुलेंगे, उनकी दुआओं के लिए कबूलियत के दरवाज़े नहीं खुलते, और उनके आमाल नामे में जो नेकियाँ जाती हैं उनको कबूल नहीं किया जाता। और इनके लिए दोजख की आग का बिछोना होगा और इनके ऊपर इसी का ओढ़ना होगा। और हम ऐसे ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम किसी शख्स को इसकी कुदरत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते, वही लोग जन्नत वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। जो कुछ इनके दिलों में कीना था हम इसको दूर कर देंगे, अल्लाह दुनिया में ही दूर कर दे। इनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको इस मुकाम तक पहुँचाया। नोट कीजिए, जन्नत में दाखिल होने वालों का पहला कलाम, पहली दुआ, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, जिस तक हमारी रसाई कभी ना होती अगर अल्लाह हमको यहाँ तक ना पहुँचाता। हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लेकर आए थे और इनसे पुकार कर कहा जाएगा कि इस जन्नत के तुम वारिस बनाए गए हो अपने आमाल के बदले। और अहले जन्नत अहले दोजख को पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था हमने इसको सच्चा पाया है, बस तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था तुमने भी इसको वाक़े के मुताबिक पाया। वो कहेंगे हाँ, फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान में पुकारेगा। अल्लाह की मार हो इन ज़ालिमों पर। कौन से जालिम? वो जो अल्लाह की राह से रूगरदानी करते थे यानी मुंह फेरते थे और इसमें टेढ़ापन तलाश करते थे, वो लोग आखरत के भी मुनकिर थे। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और अराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे। यहाँ सोचिए, कभी कोई एक नेकी आपने हल्की जानकर छोड़ दी और उसकी कमी आपको जन्नत में दाखिल होने से रोक रही है और जहन्नम में भी नहीं जा रहे, बीच में बैठे पोस्टपोन्ड रिजल्ट वाले लोग हैं ये। वो लोग हर एक को उसके चेहरों से पहचान रहे होंगे और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अभी ये अहले आराफ दोजख और जन्नत के दरमियान में होंगे और जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और इसके उम्मीदवार होंगे। जब इनकी निगाहें अहले दोजख की तरफ फिरेंगी तो वो कहेंगे ऐ हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना करना। रिजल्ट अभी नहीं आया इनका। क्या सीखा आपने? मैंने पहली बात है, तकब्बुर करने वालों के लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। तकब्बुर नहीं करना। ईमान लाने के बाद नेक अमल करने वाले हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, इसकी कोशिश करनी है। जन्नत वाले अल्लाह की हमदो सना करेंगे, हमने भी अभी से अल्लाह की हम करनी है। जन्नत वाले सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने उनको हिदायत दी। मैंने भी आज दिल की गहराई से कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नेमत कुरान पे जो अल्लाह ने हमें दी, सब कही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आराफ वाले जो हैं ये ज़ेरे गौर हैं, अभी इनका रिज़ल्ट चेक किया जा रहा है। ये इंतज़ार की कैफियत बड़ी सख्त होगी, पता नहीं क्या बनेगा, पास होंगे कि फ़ेल होंगे। अल्लाह ताला इसकी फ़िक्र में आज हमें इस नेकियों की कदर की तौफीक दे, और अल्लाह ताला से जन्नत के घर और हिदायत की दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फ़रमाए। दुनिया में कभी अगर रिज़ल्ट देर से आए तो कितनी फ़िक्र होती है, और वहाँ जाकर अगर देर से आया तो क्या बनेगा। फिर आगे देखिए रुकू नंबर 13, 48 से 53। टॉपिक लिखिएगा अहले दोजख की पुकार। यकीन करें एक लफ्ज़ अगर मैं इसके तर्जमे के दौरान ना बोलूं तो आपको रुलाने के लिए ये आयतें काफ़ी हैं। अल्लाह के कलाम ने कितने प्यारे तरीके से कुछ लोगों की बेबसी को इन आयतों में पेश किया। वनादा असहाबुल आराफ रिजाल यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और अहले आराफ बहुत से लोगों को इनके चेहरों से पहचानेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने आप को बड़ा समझना तुम्हारा कुछ काम ना आया। यानी दुनिया में तो तुम बड़े बनते थे, आज कैसे आग में चले गए? क्या ये वही है जिनकी नस्बत तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत ना करेगा, और इनको यूं हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ है और ना तुम गमज़दा होगे, और दोजख वाले जन्नत को पुकारेंगे। अगर सारे एसी बंद कर दूं, बाहर खुले मैदान में जाकर धूप में पार्किंग लॉट में खड़े होकर ये आयत पढ़ाऊं तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जहन्नम में जल रहे हैं और दूर ऊपर देख रहे हैं कि अपने ही रिश्तेदार और अपने ही दोस्त साथी जिनको ज़िंदगी में बेवकूफ़ कहते थे, ये हैं हर वक्त कुरान कुरान की बातें करते हैं, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, ये कर लो वो करो, उनको देखेंगे ऊपर से। उनके पास नेमतें, इनके पास कुछ नहीं, गर्मी है तो क्या कहेंगे, हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो और ही कुछ दे दो, कोई जन्नत का एक खजूर, कोई अंगूर, कोई अनार हमें भी फेंक दो, जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया उसमें से कुछ दे दो। जवाब सुनिए, जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों को काफिरों के लिए हराम कर दिया है। जो दुनिया में हराम से ना रुका, जन्नत की नेमतें उस पर हराम। किन लोगों के लिए? वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहवो लायब यानी खेल और तमाशा बना रखा था। रमज़ान आता था, नेक हो जाते थे, ईद का दिन आता था, सब छूट जाता था, एक खेल बनाया हुआ था इन्होंने दीन को। और जिनको दुनिया की ज़िंदगी में धोखे में डाल रखा था, बस हम भी आज के दिन इनका नाम भूल जाएंगे जैसा कि वो इस दिन भूल गए। और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी जिसको हमने अपने इल्मे कामिल से बहुत वाज़े करके बयान कर दिया, और वो ज़रिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। आप इस किताब के लिए कितनों को बुलाते हैं, कितनों के लिए तड़पते हैं, कितना दर्द है आपके दिल में, कितनों की मिन्नतें करते हैं, कितनों को प्यार से दावत में बुलाते हैं, ये आपने मैंने अपने आप से पूछना है। इन लोगों को और किसी बात का इंतज़ार नहीं, सिर्फ इसके आखिरी नतीजे का इंतज़ार है। जिस रोज़ इसका आखिरी नतीजा पहुंच जाएगा, इस रोज़ वो लोग इसको पहले से जो भूले हुए थे यूं ही कह देंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे। अब क्या फ़ायदा, अब तो वह ख़त्म हो गया। बस अब हमारा कोई सिफारशी है क्या कि वो हमारी सिफारिश कर दे, या क्या फिर हम वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग इन अमाल के जो हम करते थे बरखिलाफ़ दूसरे अमाल करें? बेशक इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया और ये जो जो बातें तराशते थे सब गुम हो गईं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस किस्म के बंदे से पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें बीवी बच्चे नहीं दिए थे? तुम्हें इज्जत और इकराम से नहीं नवाजा था? क्या ऊँट और घोड़े तेरे ताबे नहीं किए थे? क्या तू सरदारी करते हुए लोगों से चुंगी वसूल नहीं करता था? वो कहेगा, क्यों नहीं या अल्लाह, ये सब बातें सही हैं। अल्लाह ताला इससे पूछेगा, क्या तू मेरी मुलाकात का यकीन रखता था? वो कहेगा, नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, बस जिस तरह तू मुझे भूला रहा आज मैं तुझको भूलता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो अल्लाह को नहीं भूलना। क्या सीखा इस रुकू से? पहली बात, दोजख वाले मिन्नत समाजत करेंगे लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आएगा। दोजख में कोई काम नहीं आएगा। दीन को खेल तमाशा नहीं बनाना। जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया अल्लाह उनको बुला देगा। मेरे कौन से काम मेरे हक़ में सिफारिश करेंगे इसके बारे में सोचना है। और सबसे बढ़कर, अल्लाह की किताब कुरान हिदायत और रहमत के लिए भेजी गई, इससे सही फ़ायदा उठाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आगे 54 से 58 रुकू नंबर 14 टॉपिक लिखिएगा, सारी कायनात उसके आगे मती है, तुम भी हो जाओ। अल्लाह हमें कायनात को कॉपी करने वाला बना दे। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलकस समावाति वल अर्द, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया फिर अर्श पर कायम हुआ। वो रात से दिन को ऐसे तौर पर लाता है कि वो रात इस दिन को जल्दी से आ लेती है और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब इसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो, अल्लाह ही के लिए ख़ास है खालिक होना और हाकिम होना। बड़ी खूबियों से भरा हुआ अल्लाह जो तमाम आलिम का परवरदिगार है। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो। आप भी कोई दुआ करें, कोई मन पसंद दुआ जिस वक्त दिल में है, गिड़गड़ा के भी और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद नहीं करता जो हद से निकल जाएं। और दुनिया में इसके बाद के इसको दुरुस्त कर दिया गया, फसाद मत फैलाओ। और तुम अल्लाह की इबादत करो इससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह की रहमत नेक काम करने वालों के नज़दीक है। वो ऐसा है कि अपनी बारान रहमत से पहले हवाओं को भेजता है और वो खुश कर देती हैं यहाँ तक कि जब वो हवाएँ भारी बादलों को उठा लेती हैं। तो हम इस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हांक ले जाते हैं, फिर इस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर इस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यूं ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे ताकि तुम समझो क़यामत के बाद एक बहुत बड़ी बारिश होगी जिसमें से फिर इंसानों के जिस्म उगेंगे। और जो साफ़ सुथरी ज़मीन होती है उसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो ख़राब है इसकी पैदावार और भी कम निकलती है। इसी तरह हम दलाइल भी तरह तरह से बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र करती है। 4 चीज़ों की तलकीन थी इस रुकू में। आयत 56 को देख लीजिए। नंबर 1, अल्लाह से आखोजारी करना और खुफिया तरीके से दुआ करना। दुआ में ज़्यादती ना की जाए, अपनी हैसियत और मरतबे से बढ़कर दुआ ना की जाए। इसलाह के बाद फसाद ना फैलाया जाए और इसके अजाब का डर दिल में हो और उसकी रहमत की भी उम्मीद हो। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन चारों की तौफीक अता फरमाए। इस रुकू से आपने मैंने क्या सीखा कि सारी कायनात रब की मती है, मैंने भी फरमाबरदार बनना है। चांद सूरज रात दिन पर गौर व फिक्र करना है। अल्लाह को चुपके चुपके आजिज़ी से पुकारना है और दुआएँ मांगनी है और उसकी शुक्र गुजार बंदी बनना है। अल्लाह की इताअत करने की नियत करनी है, हद से नहीं गुजरना और अल्लाह को खौफ और तमे से पुकारना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, यहाँ बात थी बंजर ज़मीन की और ज़रख़ेज़ ज़मीन की। अब यहाँ से लेकर सूरत के तकरीबन ख़ात्मे तक अंबिया कराम की कौमों के हालात हैं। कैसे अल्लाह ने मुख्तलिफ़ लोगों के तरफ अंबिया कराम को भेजा लेकिन लोगों ने उनकी कदर ना की और कुछ लोग बेकार ज़मीन की तरह बंजर थे। अल्लाह ने अजाबों के ज़रिए उनको मार दिया और जो ज़रख़ेज़ थे, फर्टाइल थे, उनको अंबिया कराम के साथ बचा लिया। सबसे पहले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, टॉपिक लिख लीजिए 59 से 64, नूह काफ़िला हक़ के पहले सालार। सबसे पहले नबी जिनको इस काम के लिए भेजा गया वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। लकद अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमे बुदुल्लाह। हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया, मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद होने के काबिल नहीं, मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। इनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा, नोट कीजिए बड़े लोग, हम तुमको सरी गलती में देखते हैं। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम, मुझ में तो ज़रा भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं अपने परवरदिगार आलम का रसूल हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से इन उमूर की खबर रखता हूँ जिनकी तुमको खबर नहीं। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारा ही हम जिन्स है कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए, बस वो लोग इसको झुटलाते ही रहे। तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इनके साथ जो कश्ती में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया इनको हमने गर्क कर दिया, बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। इस किस्से को आगे हम बहुत जगह पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे सूरत हूद में। यहाँ सिर्फ अमल के नुक्ते नोट कीजिएगा। पहली बात है कि रसूल हमारे खैर ख्वाह थे, हमने उनकी पैरवी करनी है और दूसरों के साथ ख़ुद भी खैर ख्वाह रहना है। अल्लाह इनकार करने वालों को डबो देता है, इसलिए इनकार से डरना है। इस काफ़िले ईमान में दाखिल होना है जिसमें निजात है। सबको रब के रास्ते की दावत देनी है, जैसे हज़रत नूह ने 950 साल तक दी। आज से दावत का काम करना है और आगाज़ घर वालों से और दोस्तों और सहेलियों से करना है। अल्लाह इसकी तौफीक दे। दूसरे नबी की कहानी आयत 65 से 72, रुकू नंबर 16। हूद काफ़िला हक के दूसरे सालार। व इला आद नखाहुम हूदन, वही पैगाम है, एक ही कहानी बस, अब चलती जाएगी हर नबी की ज़ुबान से। और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा, उन्होंने फरमाया, मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं। इनकी कौम में जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा, हम तुमको कम अकली में देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में समझते हैं। इनकी कौम में जो बड़े लोग काफिर थे उन्होंने कहा, हम तुमको कम अकली में देखते हैं। ये देखिए, अपने दौर में दीनदारों को कम अकल समझने का रिवाज तब भी था। और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में समझते हैं, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। याद रखिए, खैर ख्वाही के बगैर ये काम हो ही नहीं सकते। और क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारा हम जिन्स है कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वो शख्स तुमको डराए और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डेल डोल में तुमको फैलाओ ज़्यादा दिया, बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुमको फला नसीब हो। उन्होंने कहा, क्या हमारे पास इस वास्ते आए हो कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें और जिसको हमारे बाप दादा पूछते थे इनको छोड़ दें, बस हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया, क्या तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गज़ब आया ही चाहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया। इनके माबूद होने की दलील ना तो अल्लाह ने दी, बस तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। गरज हमने इनको और इनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो ईमान लाने वाले न थे। आपके मेरे लिए सीखने की बातें। नंबर एक, लोग चाहे कुछ भी कहें, अल्लाह के दीन की दावत देनी है, लोगों के साथ खैर ख्वाही करनी है, दीन हक की तरफ बुलाना है, मुखलिस बनना है ताकि बच जाएं, शिर्क वालों पर अल्लाह का गज़ब है इसलिए शिर्क से बचना है, अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखना है ताकि कामयाबी हासिल हो, गलत बातों पर बहस नहीं करनी, अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले। आयत 73 से 84, टॉपिक वही है। और हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा, उन्होंने फरमाया, मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ह दलील पहुंच चुकी, ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, बस इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना कि कहीं तुमको दर्दनाक अजाब आ पकड़े। तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया, कि नरम ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मतकब्बिर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो के इनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है कि साले अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेशक हमको तो इस पर पूरा यकीन है जो इनको देकर भेजा गया। वो मतकब्बिर लोग कहने लगे, तुम जिस बात पर यकीन लाए हो हम तो इसके मुनकिर हैं। बस उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, साले जिसकी आप हमको धमकी देते थे इसको मंगवाइए अगर आप पैगंबर हैं। बस इनको जलजले ने आप पकड़ा और वह अपने घरों में ओंधे ओंधे मुँह गिर पड़े। इस वक्त साले अलैहिस्सलाम इनसे मुँह मोड़ कर चले गए। क्या दिल पे गुजरी होगी जिस कौम की इतनी खैर ख्वाही की, उन्होंने क्या किया? और कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने रब का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। और इसके बाद फिर हमने लूत को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, तुम ऐसा फुहश काम करते हो जिसका तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से इर्तकाब नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से गुजर जाने वाले हो। और इनकी कौम से कुछ जवाब ना बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे, इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। बस हमने लूत अलैहिस्सलाम को और इनके घर वालों को बचा लिया सिवाय इनकी बीवी के, कि वो इन्हीं लोगों में रही जो अजाब में रह गए। हमने इन पर ख़ास किस्म का मीह बरसाया, बस देख तो लो कि क्या इंजाम हुआ इन मुजरिमों का। यानी अल्लाह ने इनको पत्थरों से मरवा दिया। आपके मेरे सीखने की बातें, नंबर एक, दावत हक को अपना मिशन बनाना है इंशाल्लाह। अल्लाह के सिवा बंदगी किसी की नहीं करनी। कुदरत के करिश्मों से गाफिल नहीं होना, आजमाइशों में पूरा उतरना है, बेहयाई और फहाशी से दूर रहना है और अल्लाह के शुक्र गुज़ार बन के रहना है। चंद आयतें हैं, अगला हिस्सा अगले पारे में होगा। हज़रत शुएब की कौम के बारे में आयत 85 से 87, दो आयतें सिर्फ। काफ़िला अहले ईमान और सालार है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। और हमने मदियन की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार से वाज़े दलील आ चुकी, बस तुम नाप और तोल पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीज़ें कम करके मत दो और वह ज़मीन में इसके बाद कि इसकी दुरुस्तगी कर दी गई फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है अगर तुम सच्चे हो। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको और इसमें कजी तलाश करने लगो। और इस हालत को याद करो जब तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज़्यादा कर दिया और देखो कैसा इंजाम हुआ फसाद करने वालों का। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझको भेजा गया ईमान ले आए तो कुछ ईमान नहीं भी लाए तो ज़रा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फ़ैसले किए दे, और वह सब फैसला करने वालों से अच्छा फ़ैसला करने वाला है। क्या पता चला, अम्बिया कराम की दावत एक ही थी और कौम का रवैया भी एक था। हर कौम का मुख्तलिफ फ़ैल था। इसको इंशाल्लाह हम आगे सूरत शोरा में जाकर तफसील से करेंगे क्योंकि वहाँ पूरा पारा तकरीबन अम्बिया कराम के किस्सों से है। अल्लाह ताला मल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। आज की आयत तदब्बुर आयत 27 सूरत अलराफ थी जिसमें शैतान की दुश्मनी खुलकर सामने आती है। और आज की हदीस भी सही मुस्लिम की 7106 है कि इबलीस अपना तख्त पानी पे रखता है और सब तरफ अपने कारिंदों को भेजता है और छोटे बड़े काम करने वालों को मुबारक देता है। आपने मैंने आज इंशाल्लाह शैतान की दुश्मनी को महसूस करना है। और आज की दुआ, रब्बी आउज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन वाउज़ बिका रब्बी अन यख़दुरून। अल्लाह ताला आपको मुझे शैतान से बचा ले और शैतानी रवैयों से बचा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।